یہاں پہ بیٹھ جائیں پھر انشاءاللہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. یہ سورہ عادیات کی میں نے چند آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس سورہ کا نمبر 100 ہے, 100 نمبر ہے اس سورہ کا قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے. والعادیات ضبحا, اور عادیات اس کا نام ہے. جیسے کہ موضوع اس کا ہے, پوری صورت تو ہم کور نہیں کریں گے مگر چند ایک باتیں جو اس صورت سے ہم نے کور کرنی ہے. اس کا موضوع ہے انسان کی ناشکری, اور آج اسی چیز پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ شکر گزاری ہے کیا, کس چیز کو شکر کہتے ہیں. ہمارا قرآن شروع کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا ہوتا ہے مطلب حمد کا؟ حمد کا معنی کیا ہے؟ ساری تعریف اللہ کی ہے. بالکل ساری, ہم کہتے ہیں ساری تعریف, جتنی تعریف ہے کسی کے بھی اچھے اوصاف جو آپ بیان کرتے ہیں. تو اصل میں انسان کے اندر سے یہ جو اٹھتے ہیں نا جذبات, ایک کسی کے لیے اچھائی, کسی تعریف کے, اس کو حمد کہتے ہیں. حمد کہ ساری تعریف اللہ کی ہے, اور شکر بھی اس کو کہتے ہیں. لیکن حمد اور شکر میں تھوڑا سا فرق ہے. حمد صرف زبان سے ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں نا سارا شکر اللہ کا. شکر زبان سے بھی ہوتا ہے, دل سے بھی ہوتا ہے, اور عمل سے بھی ہوتا ہے. تینوں چیزوں سے شکر ہوتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی ان گنت نعمتیں دی جن کو کہ ہم گن نہیں سکتے, ان نعمتوں کا ہم بدلہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں دے سکتے. دے سکتے ہیں کوئی بدلہ؟ کوئی بدلہ نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ. ہاں انسان اللہ کو کچھ دے سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ شکر. کہ رب کے حضور انسان پیش ہو کے شکر ادا کرے. کیسے شکر ادا کیا جائے؟ جب ہمارا دل فل ہو جاتا ہے ان جذبات سے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ نعمتیں کی ہیں, یہ کرم کیا ہے, تو یہ ہے اس نعمت کا اعتراف کرنا. یہ پہلا سٹیپ ہے شکر کا, کہ انسان یہ مان لو کہ یہ میرے رب نے مجھے دیا. انسان یہ مان لو کہ یہ میری اپنی قابلیت سے نہیں ہے, میری اپنی کوئی سکل سے, میری اپنی کوئی پڑھائی سے, میرے اپنی کوئی نالج سے, یہ مجھے پوزیشن, یہ مجھے جاب, یہ مجھے گھر, یہ بچے, یہ میری اپنی کوئی وہ نہیں ہے. جیسے ہم تو سوچتے ہیں نا کہ میں نے یہ کیا, میں نے محنت کی تو اس لیے مجھے یہ جاب ملی, میں نے محنت کی تو مجھے یہ ڈگری ملی, میں نے محنت کی تو یہ. میں شکر کے اپوزٹ ہے. کیا شکر کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلا اس میں سٹیپ, شکر تین چیزوں سے بنتا ہے نا. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ مان جاؤ, دل میں آپ یہ اعتراف کر لو کہ یہ سب میرے اللہ کا دیا. کسی چیز میں جو بھی آپ کو نعمت ملی ہے, اچھا, اور دل میں قدردانی جب آ جائے, اعتراف بھی آئے اور قدر بھی آ جائے کہ دیکھو میرے رب نے مجھے کتنی چیزیں دی. اچھا, اب جب یہ نعمت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے نا, جس چیز کو انسان کا دل مان جائے اور قدر بھی آ جائے, ضرور ایسے ہوتا ہے کہ اس کی زبان پہ بھی الفاظ آئیں, ضرور ایسے ہوتا ہے کہ زبان سے بھی وہ بولے. دیکھیں اب مثلا آپ کے دل کے اندر اپنے بچے کی اگر محبت آ گئی, اور آپ کے دل کے اندر یہ آیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے, یا آپ کے دل کے اندر بچے کا احساس ہے, آپ کی زبان سے خود بخود, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خود بخود بچے کی باتیں نکلتی رہیں گی. کتنی دیر ہم بیٹھ کے بچوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ہمارا دل کس سے فل ہے؟ بچے کی محبت سے. ہمارے دل میں کون ہے؟ بچہ ہی بچہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے دل میں کون ہے؟ گھر ہی گھر ہے, اس لیے گھر کی باتیں ہوتی رہیں گی. جو چیز دل میں ہوگی وہی زبان پہ آئے گی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے دل میں بھرا کیا ہوا ہے. وہ ایک چیز کے گرد گھومتی رہے گی, بات گھومتی رہے گی. اچھا دوسرے کو انٹرسٹ ہو نہ ہو, वो हिलेंगी नहीं कि बच्चे ने आज ये कहा, आज ये किया, ये खाया, ये पिया, ऐसे चला, ऐसे क्यों? दिल में भरा हुआ है बच्चे की मोहब्बत। जब दिल के अंदर नेमतों का इतराफ आ जाता है और इंसान ये जान लेता है कि ये सारा कुछ, थोड़ा सा बच्चों को जरा खामोश अगर करा लें, जजाके एक कमरे में इनको बिठा दे, तो जब दिल में ये एहसास पैदा हो जाएगा ना कि अल्लाह ने मुझे दिया है, तो इंसान उसके एहसान तले दब जाता है और उसकी मोहब्बत से दिल फिल्ड हो जाता है। फिर मुंह से भी निकलेगा तो अल्लाह की बात निकलेगी, तब किसी कहने पे नहीं निकलेगी कि कोई अल्लाह का जिक्र करो, आओ हम जिक्र की मजलिस करते हैं, उसमें जिक्र करेंगे। फिर इंसान उठते बैठते चलते फिरते जैसे आप बच्चों का जिक्र करते हैं, घर का जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करने लगेंगे। तो अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में, सारे कुरान में, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह जो सूरा पढ़ भी रहे हैं, सूरा रूम, तो देखें आप कितनी सारी निशानियों की अल्लाह ने जिक्र किया। वो सारी निशानियों का क्यों जिक्र किया? इसी तरह हमने इससे पहले पढ़ी थी सूरा नहल, आप लोग में से अक्सर लोग हमारे साथ उसमें नहीं थे, लेकिन वो है ही नेमतों वाली सूरत। अगर आपको मौका मिले तो उस सूरत की आप तफसीर ज़रूर सुनिएगा। वो है ही पूरी की पूरी सूरत में नेमतों का जिक्र है। क्यों अल्लाह ताला इतनी नेमतों का जिक्र कर रहे हैं? क्या सोचते हैं आप, क्या चाहते हैं अल्लाह ताला? कि आपको नेमतों का एहसास हो जाए और आपके दिल में कदरदानी हो कि मेरे रब ने मुझे क्या कुछ दिया, और आपका दिल फुल हो जाए उससे, और फिर आप अपनी जुबान से भी बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। वो वाला जो अल्हम्दुलिल्लाह है ना, वो मीज़ान को भर देता है। एक है ना ऊपर ऊपर से ही ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह बोल देना, उसने क्या दिया, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, या एक है एहसास हो के फिर जुबान से निकलना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दिया। ये कब होता है? अक्सर ये उस वक्त होता है जब कोई नेमत इंसान से छिन जाए और वापस मिले ना, फिर देखें कैसा निकलता है। गर्मियों का अगर आप रोज़ा रखें और रोज़ा खोलते वक्त जब आप पानी पीते हैं, जो वो अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, आप बताएं आम दिनों में क्या वैसा निकलता है? नहीं निकलता। अगर आप यहाँ से हाई कर देगा या मैं करीब थोड़ा कर लेती हूँ, आप जितना नेमतों की कदर करेंगे ना, उतना ही आपके दिल में शुक्र गुजारी बढ़ती जाएगी। जितनी कदरदानी होगी कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत नेमतें दी। आप अगर इन कुरान में जो निशानियां हैं उनको देखें, वो भी आपको हेल्प करेंगी। और जैसे हमने अभी पढ़ा ही है कि अपने जिस्म में ही देख लो, तो आपको पूरा जिस्म बताता है कि कितनी अल्लाह की नेमतें। आपका एक हार्ट है ना, दिल, दिल को ही अगर आपको कह दिया जाए आप खुद पंप करो, खुद पंप करो उसको, एवरी सेकंड आप पंप करेंगे। कैसे करेंगे? जब से पैदा हुए पंप करना शुरू करो, आप तो कोई और काम कर ही नहीं सकते। आपको अगर कहा जाए कि जो आपका मैदा है जो वो काम करता है ग्राइंड करने का खाने को, आप वो खुद करो और उसकी पेस्ट बनाओ, आप बताएं कितना मुश्किल है। सारा दिन तो आप यही करते हैं, जितना हम खाते हैं उसके मुताबिक सोचें कि रात को तो सो ही नहीं पाएंगे जब तक वो ग्राइंड ना हो जाए। फिर उसके बाद उसके अंदर से जो अच्छी चीज़ है वो निकालो और जो गंद है उसको साफ करो, एक तरफ कर दो। ये कितना मुश्किल काम है कि इंसान ये काम करे। फिर उसके बाद अपनी सांस को चलाओ, इसको चलाने में भी अगर हमें कोई मुशक्कत होती और ये भी काम होता, ये तो आ जा रही है ना और हमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ा, लेकिन इसको चलाने में भी अगर हमें काम करना पड़ता, मुझे बताएं कितने ही लोग ऐसे होते ज़रूर जो कहते हैं कि अब नहीं मुझसे हो सकता, मैं तो बहुत थक गई हूँ, दिल को कभी पंप करती हूँ, कभी खाने को ग्राइंड करती हूँ, कभी सांस को चलाने के लिए मेहनत कर रही हूँ, मैं नहीं कर सकती, अब मरूँ तो मरूँ, अब मुझसे नहीं होता ये। तो अल्लाह ताला ने कितनी सारी नेमतें तुम्हें ऐसी दी हैं जो तुमने कुछ इसमें ज़रा बराबर की भी आपकी उसमें पार्टिसिपेशन नहीं, ज़रा बराबर का भी आपका उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो खुद ब खुद सारा काम हो रहा है, खुद ब खुद आपका खून बन रहा है, खुद ब खुद आपका वेस्ट जो है वो अलग हो रहा है, खुद ब खुद आपके अंदर ताकत आ रही है, खुद ब खुद ये सारा काम अल्लाह ताला कर रहे हैं। जब अल्लाह ने आज़ा को, इन आज़ा को कुन कह दिया, तो आप देखें ये इंसान मान लेना कि मेरा रब ये सारा कुछ मेरे लिए कर रहा है और मेरी नाफरमानियों के बावजूद कर रहा है, तो कितना शुक्र इंसान के दिल में आता है कि अल्लाह मैं तो इतनी नाफरमान फिर भी तू एक सांस भी नहीं रोकता मेरा, अल्लाह मैं तो इतनी नाफरमान फिर भी एक दिल की धड़कन भी नहीं तू रोकता मेरी। देखें खुद ही सोचें, हम कहते हैं ना हमारे पास अल्लाह के लिए टाइम नहीं, तो अगर अल्लाह कुछ देर के लिए ये कह दे कि ठीक है मेरे पास भी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है और जाओ अब अपना
सांस खुद ही लो और अपना दिल को खुद ही धड़काओ और खुद ही सारा काम करो, बताओ क्या करोगे?
जिन मसरूफियात में आप लगे हुए हो, जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हो, वो इसी सूरत में भाग सकते हो जब बाकी सारे आपके जिस्म के मैटर्स को अल्लाह ताला टेक केयर कर रहा है, तभी तो आप भाग रहे हो। आपको सारे अपने जिस्म का काम खुद करना पड़ता तो कहाँ से आप वो वक्त लाते कि आप इतनी दुनिया की बातों के लिए तो सारे भाग रहे हैं, सारे टाइम भी निकाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की खातिर वक्त निकालने का किसी को शऊर ही नहीं रह गया। तो ये जो कदरदानी दिल में आएगी, ये शुक्र है, पहला स्टेप है। फिर जुबान पे आएगी तो ये बन गया एतराफ़, एतराफ़ नेमत इसको कहते हैं कि अब मैं जुबान से भी मान गई कि या अल्लाह तू ही है ये सब कुछ देने वाला, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, या अल्लाह तू ही है मेरे लिए सब कुछ करने वाला। तो अल्लाह ताला की नेमत क्या चीज़ है? नेमत वो है जिसको इंसान डिजर्व नहीं करता। ये नहीं समझे कि ये हम डिजर्व करते थे, सब कुछ तो हमें घर मिला, डिजर्व करते थे तो ये मिला। नेमत वो है जो इंसान डिजर्व नहीं करता, फिर भी अल्लाह अपने फजल से दे रहा है, अपनी रहमत से दे रहा है। तो जितनी आपके पास चीज़ें हैं, खुद ही सोच लें, जितनी आप नेमतें इंजॉय कर रहे हैं वो आपका कोई कमाल नहीं है, आपने कोई मेहनत नहीं की उनके लिए, वो अल्लाह ने आपको ऐसे ही दी मुफ्त में। कितने लोगों ने अपने किडनीज के लिए पे किया है? अभी ये बता रही है ना किडनी, इनके हस्बैंड के इस तरह से हो गया, आप मुझे बताएं एक किडनी को भी सब्स्टिट्यूट करना हो कितना मुश्किल है, कहां से लेकर आओगे? एक ऑर्गन भी, अगर आपको एक ऑर्गन भी कहीं से खरीदना पड़े आप कहां से ला सकते हो? लाखों डॉलर दे के भी आपको एक ऑर्गन नहीं मिल पाता जो सही आपके साथ मैच कर ले और आपकी बॉडी भी उसको एक्सेप्ट कर ले, नहीं मिल पाता। तो खुद बताओ कि कितनी ही सारे इस जिस्म को ही ले लो अगर, कितनी ही सारी नेमतें हैं जो अल्लाह की दी हुई हैं, जिनको तुम एंजॉय करते हो दिन रात, और तुम्हारे पास इतना वक्त ही नहीं कि तुम अल्लाह की नेमतों का ही शुक्र अदा करें, गिन भी नहीं सकते तो शुक्र क्या अदा करना। मैं कहती हूँ एक नेमत भी इंसान के पास से चली जाए ना तो इंसान सोचता है अल्लाह इस नेमत को तूने मुझे कितने अरसे से मुफ्त में दिया हुआ था, आज ये नेमत मुझसे गई है तो मुझे एहसास हुआ है कि ये तूने ये भी मुझे एक नेमत दी है। इंसान वाकई ये नहीं सोचता, किसी ने अपनी सच्ची बात शेयर की थी कि उनके कोई जानने वाले थे जो सो के सुबह को उठे और उन्होंने पैर ज़मीन पे रखे, कहते उठ ही नहीं पाए, खड़े हो ही नहीं पाए, और समझ ही नहीं आई कि क्या वजह हुई, क्या वजह हुई। अच्छे भले कहते हैं सोए रात को, वो खड़े ही नहीं हो सकते, पैरालाइज हो गए या क्या हो गया कुछ पता नहीं। हम सब सुबह को सो के उठते हैं, अल्लाह ताला हमें मौत से दोबारा एक नई ज़िंदगी देते हैं, क्या शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी दे दी, अल्लाह ने खड़ा कर दिया, अल्लाह ने चलने के काबिल कर दिया, मैं सोई हुई थी उसमें ही अल्लाह ने मेरी रूह नहीं कब्ज़ कर ली, मुझे सांस लेने दिया उस वक्त भी मेरा सांस चलता रहा। कितनी सारी नेमतें आप अपने जिस्म में गौर करो तो तब आपको मिलेंगी, और नेमतें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों को गिनना शुरू करो तो तुम गिन नहीं सकते इतनी उसकी नेमतें। तो जब आपके दिल में ये एहसास और ये जज्बे आपके दिल में आ जाएंगे और ज़ुबान पे भी आएंगे, उसके बाद हो नहीं सकता कि आपके अमल में ना आए। तीसरा स्टेप जो शुक्र का है ना, वो शुक्र बिल जवारे है, यानी इंसान अपने ऑर्गन्स के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करे। ऑर्गन्स के साथ कैसे शुक्र अदा करते हैं कि इंसान उन नेमतों को अल्लाह के काम में भी लगाए ना। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि उनसे अपने लिए कोई काम ना लो, लेकिन क्या तुम अब इन नेमतों को अल्लाह के रास्ते में भी लगाते? लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई कोई चीज़ दे, आप कहते हैं अच्छा तुमने तो मुझे दे दी लेकिन तुम्हें ही नहीं ये खिलाऊंगी, या आप कहती हैं एक कंपनी वालों ने आपको गाड़ी दी है, आप कहते हैं कि कंपनी का जो मालिक है उसी को इस गाड़ी में नहीं बिठाऊंगी, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप कहते हैं जिन्होंने ये दी है उनका तो ज़्यादा हक है। आप ये समझते, जब आपको ये पता है कि अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं तो आप सोचते हैं कि अल्लाह का सबसे ज़्यादा हक है कि उसके रास्ते में इस्तेमाल हो। अगर ये आप समझते हैं ना ये मेरी ज़िंदगी मुझे अल्लाह ने दी है और उसकी अमानत है, तो सबसे ज़्यादा किसके रास्ते में खर्च होनी चाहिए? लेकिन सबसे लीस्ट किसके रास्ते में खर्च होती है? अल्लाह के रास्ते। अगर आप वाकई ये समझते हो और आप कदर करते हो कि ये मेरे ऑर्गन्स, मेरी आंखें, मेरी जुबान, मेरी ये कान, मेरे हाथ पैर ये अल्लाह की नेमतें हैं, तो इनका शुक्र कैसे होगा कि इन आंखों से, इनसे भी अल्लाह की निशानियों को देखो, इनसे भी कुरान को समझो पढ़ो, इन हाथों से शुक्र कैसे होगा? इन हाथों से वो काम करो जिससे अल्लाह राजी होता हो, इन कानों से वो सुनो जिससे अल्लाह राजी होता, इस जुबान से वो बोलो जिससे अल्लाह राजी होता। लेकिन अगर उसी के खिलाफ चलने लगी है तो ये तो क्या कहलाएगी? ना शुक्र। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन शकर तुम लअजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे ना अल्लाह तुम्हें और ज्यादा देगा, और अगर तुम ना शुक्री करते हो तो अल्लाह ताला वो चीज़ें भी वापस ले लेता जो उसने तुम्हें दी थी। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं, हम भी और हमारे बच्चे भी, इस कदर ना शुक्र हैं हम लोग, इस कदर ना शुक्र हैं कि हमें इतनी नेमतें भी मिली होती हैं ना, फिर भी हम कहते हैं हम तो बड़े बोर हो रहे हैं, बोर हैं, और ये दोबारा क्यों पका लिया, ये तो पहले भी खाया था, और ये ऐसा क्यों बन गया, और ठंडा पानी क्यों नहीं मिला, और ये क्यों नहीं मिला, और कंफर्टेबल वो क्यों नहीं है, और गर्मी बहुत है, ओह हो गए हम इतने ना शुक्र हो गए, जितनी ज्यादा अल्लाह ने हमें नेमतें दी ना, बजाय इसके कि नेमतें पाते हम उसके सामने झुक जाते और ज्यादा हम नाशुक्री करने लगे, यानी नेमत के बाद नाशुक्री हमारी बढ़ती गई। हमसे ज्यादा वो इंसान अच्छा है कि जो झोंपड़ी में रहता है, ठीक है, जैसा भी है जैसा तैसा उसको मिलता है खाता है, एक वक्त का ही खाता हूँ, रूखी सूखी खाता है, जैसा पानी मिला उसके पास कोई फ्रिज नहीं है वो वैसे ही पी लेता है, ज़मीन पे सोता है फिर भी सुबह उठता है तो कहता है शुक्र है अल्लाह का, फिर भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं ज्यादा पूछ किसकी होगी, जिसके पास ज्यादा नेमतें हैं जिसके पास कम है? और हमारे पास बेशुमार नेमतें, हमारा शुक्र कितना होना चाहिए, ज्यादा या कम? लेकिन उतना ही हम देखते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों में ऐसे गुम हुए कि उस देने वाले को भूल गए। और इसी का इस सूरत के अंदर जिक्र है, अल्लाह ताला ने फरमाया है घोड़ों की मिसाल दे के, एक तो ये सूरत मुझे वैसे ही इतनी पसंद है, घोड़ों की मिसाल दे के अल्लाह ताला ने फरमाया वल आदियाति दबहा, दौड़ने वालों की, वो जो हाँपते हैं दौड़ते इतना दौड़ते, घोड़ों की मिसाल अल्लाह ने क्यों दी पहले आपको ये बता दूँ, ये किन घोड़ों की मिसाल है? जो जंगी घोड़े जो जंगों में यूज़ होते हैं, या लोग लूट मार के लिए उस ज़माने में घोड़े यूज़ करते थे, तो अल्लाह ताला एक एनिमल की मिसाल दे के इंसान को समझा रहे हैं। घोड़े की मिसाल कैसे दी, देखो वो घोड़े हैं ना अपने मालिक के लिए, अब देखो घोड़ों के लिए वो जंग के लिए घोड़े को यूज़ करते थे, तो क्या घोड़े की अपनी कोई दुश्मनी थी? क्या घोड़े की कोई दुश्मनी थी जंग में? नहीं, उसको क्या लेना देना, वो तो एक जानवर है, किसी की सवारी है ना। अच्छा, वो जो घोड़े का मालिक है ना असल में दुश्मनी उसकी है, वो लड़ने जा रहा है, लेकिन घोड़े को देखो वो दौड़ने वाला जो इतना तेज दौड़ता है कि हाँप रहा है दौड़ दौड़ के। अच्छा, उसको ये नहीं फिक्र है कि मैं क्यों जाऊँ इसके लिए, मालिक होता रहेगा मेरा, मेरी कौन सी दुश्मनी है, अब मैं इसकी खातिर जंग में इतनी तेज भागूं, मेरी कितनी ताकत यूज हो रही है, और भाग भाग के मैं तो हाँप रहा हूँ, ये तो नहीं वो कहता। वो अपने उसके मालिक ने उसको दौड़ाया तो अपने मालिक के कहने पर वो इतना तेज दौड़ा कि अब ये जो साउंड होती है ना इसको कहते हैं हाँपना, तो वो हाँपने लगा। फिर फल मूरियाती कदहा, आग सुलगाते हुए जो टाप टाप मारती, जब आपको पता है कि हॉर्स शू जो होता है उसके नीचे वो लगा होता है लोहा जो भी है, ठीक है, जो उसकी नाल होती, वो उसको जब जोर से जमीन पे मारते, जितनी जोर से मारेंगे तो चिंगारियां उठती हैं, क्योंकि जमीन से पत्थर के ऊपर अगर वो लगेगी तो सोचे चिंगारी उठेगी ना, तो इतना तेज भाग रहा है कि उससे चिंगारियां उठ रही हैं। फल मुगीराती सबहा, फिर हमला करने वाले सुबह को, ये घोड़े की कसमें खा रहे हैं अल्लाह ताला, ये कसम है उन दौड़ने वालों की जो हाँपते हैं दौड़ते हुए, कसम है उन की जो के आग सुलगाते हुए जब अपनी टापे मारते हैं, और कसम है उनकी कि जब वो हमला करते हैं सुबह सवेरे। अच्छा, सुबह सवेरे उसको क्या जरूरत है उठने की, लेकिन मालिक जो है ना वो असल में उस जमाने में अरब जो थे रात को नहीं जंगे किया करते, दिन के वक्त लड़ने के लिए जाते थे, यहाँ कहीं भी हमला करना होता था दिन के वक्त जाते थे, अटैक दिन के वक्त होता था, सुबह सवेरे वो मालिक के कहने पे। अच्छा, हमसे तो उठा नहीं जाता, हम तो मलका रानियाँ हैं, तो हम तो कहते हैं हम नहीं उठ सकते इस वक्त, जब उठेंगे तो तब हो जाएगी नमाज, लेकिन वो घोड़ा देखो सुभान अल्लाह, जब सुबह सवेरे मालिक ने उठाया कि चलो जंग के लिए जा रहे हैं, तो वो हमला करने वाले जो सुबह सवेरे हमला करते हैं, फिर फ़र नबी न कहा, और गुबार उड़ाने वाले जो इतनी तेज़ भागते हैं, जब ज़ाहिर है कोई तेज़ भागता है तो गुबार उड़ता है ना, पीछे डस्ट उड़ती है, अब आप देखते हैं जब घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ के जाता है तो पीछे डस्ट आपको नज़र आती है, यार हम कल्ला तो उस वो इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि गर्द उड़ा रहे हैं, अल्लाह ने उनकी कसम खाई। फवसत नबीही जमा, फिर घुस जाने वाले उस वक्त फौजों के अंदर, अब वो अपनी जान की नहीं उनको परवाह, कि आपने देखा कई वॉर्स के अंदर, वो पुरानी वॉर्स में दिखाते हैं घोड़े भी मर जाते हैं, घोड़ों को लेजे लगे गिर गए। अच्छा घोड़ा नहीं ये कह रहा कि हाय दुश्मनी तो तेरी है, मुझे क्यों ले जाके अंदर फंसा रहा, मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई। अच्छा वो अल्लाह ताला ने देखा सुभान अल्लाह उस घोड़े की कसम इन घोड़ों की खाई, फरमाया फवसत नबीही जमा, फिर घुस जाने वाले उस वक्त फौज के अंदर, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर घुस जाना, किसकी खातिर, किसकी खातिर, मालिक की खातिर। ठीक है, मालिक ने क्या पैदा किया इसको, है वो जो ऊपर बैठा है इसने पैदा किया है क्या इसको, क्या देता है इसको, वो चारा खिलाता है बस, वो दो वक्त की तेरी रोटी खा के तेरा ऐसा फरमा बरदार, ऐसा तेरा शुक्र गुजार। इसीलिए अल्लाह ने आगे फरमाया इन्नल इंसान अली रब्बिही लकनूद, काश आपको इसका मतलब समझ आए कि इस आयत में कैसा दर्द है कि बेशक इंसान जो है ना वो अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। इंसान तू अपने आप को देख, वो घोड़े से ही सीख ले, घोड़े और इंसान में कुछ तो फर्क होना चाहिए। घोड़ा ना ना नहीं कहता किसी वक्त भी, उसने ना नहीं कहनी, वो भाग रहा है, वो दौड़ रहा है अपने मालिक के लिए, जंग में घुस रहा है, जान की परवाह नहीं कर रहा, वो सुबह सवेरे भी उठ रहा है, लेकिन वो इनकार नहीं करता, ए इंसान तू अपने रब का खाता भी है, पीता भी है, पैदा भी उसने किया, इसको तो पैदा नहीं उसके मालिक ने किया, वो तो बस उसको खिलाता है, तुझे तो तेरे मालिक ने पैदा किया, तेरी हर काम को उसने संवारा, तुझे खिलाया पिलाया सुलाया उठाया, तेरे हर काम को संवारा, तेरी जिंदगी मौत जिसके हाथ में, तेरा नफा नुकसान जिसके हाथ में, तेरी इज्जत जिल्लत जिसके हाथ में, तू अपने रब का कितना नाशुक्रा है, कितना नाशुक्रा है। और आप देखें वाकई इंसान अगर अपने आप पे गौर करे, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, बेशक वो इस पे खुद भी गवाह है। अगर इंसान गौर करे तो हर इंसान ये सोचे वो अपने रब का किस कदर नाशुक्री में ज़िंदगी गुजार रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया शुक्र गुजारी क्या है। अब आप ये देखें घोड़ा अगर वफादारी जानता है तो क्या इंसान, जो घोड़े के पास तो शऊर नहीं, क्या घोड़ा हमसे ज़्यादा अकलमंद है, क्या हमसे ज़्यादा अकलमंद है घोड़ा, उसके पास तो इतनी अकल भी नहीं है फिर भी वो कितना वफादार है। पर तुम्हें रब ने कितनी अकल दी, कितनी समझ दी, तुम फिर भी ना फरमानो, शऊर रख के अकल रख के ना फरमानो, तुमसे तो वो घोड़ा अच्छा रह गया। अच्छा हम अपने लिए कौन सा पेट चाहते हैं जो सबसे वफादार हो, लोगों को बड़ा कुत्ता रखने का बहुत शौक होता है, क्यों, उसकी वफादारी जी बहुत है ना, क्योंकि वो वफादार है, अपने लिए तो वफादार पेट चाहते हैं, और अल्लाह के हम सबसे बेवफा हैं, सबसे ज्यादा नाशुक्र हैं। तो अगर इंसान इन चीजों पे गौर करे, देखो जानवर में और इंसान में ये ही फर्क यहाँ पे आ जाता है कि इंसान को रब की निशानियों को देखकर उसको पहचान लेना है, इंसान को ये देखकर ये कहना है कि मेरे रब, घोड़ा अगर इतना फरमा बरदार अपने मालिक का है तो मैं वफादारी घोड़े से ही सीख लूँ, और मैं ही को अपने रब की फरमा बरदार बन जाऊँ, मैं ही वफादार बन जाऊँ, मैं ही शुक्र गुजार बन जाऊँ, वो तो मालिक को ज़रा भी कोई आगे से चूँ चरा नहीं करता, मैं कितनी दफ़ा मालिक के हुक्मों के ऊपर कहती हूँ कि मुझे ये हुक्म नहीं मानना, कितनी दफ़ा मालिक का हुक्म आता है तो मैं कहती हूँ मुझे अब सुबह नहीं उठना, कितनी दफ़ा मालिक का हुक्म आता है तो मैं कहती हूँ कि मैं नहीं ये कर सकती, जान कुर्बान करना तो आपसे मांगा ही नहीं है, वो तो जान की कुर्बानी भी दे रहा है ना, कई घोड़े मरते हैं इस सिलसिले में, और कई घोड़े आपने ये देखा है सुभान अल्लाह, आपने देखा होगा इनके अंदर जो दिखाते हैं कि अगर मालिक मर गया ना उसको अपने ऊपर दाद के वो लेकर आ जाते हैं घर, कैसा वफादार है। तो ये देखो आपसे तो जान मांगी भी नहीं गई, आपसे तो छोटी छोटी चीज़ों का तकाजा किया गया, छोटी छोटी आपसे रिक्वायरमेंट्स हैं, आप तो वो भी पूरी नहीं करते, तो खुद अपने आप को सोच लो इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला किस तरह इंसान की इस बेवफाई को हाईलाइट कर रहे हैं, कि सोचते तो सही देखो तो सही, ये भी तो तुम्हारे सामने ही है ना जानवर, और क्या लेता है तुमसे, एक चारा ही तो खाता है, फिर देखो कैसा है, और तुम अपने आप को देख लो कि तुम दिन रात अल्लाह की कितनी सारी नेमतों को इस्तेमाल करते हो और फिर भी उसकी नाशुक्री किए चले जाते हैं। तो कनूत का माना क्या है? कनूत का माना एक तो है नाशुक्री, और एक कनूत का माना यह है कि वो जो नेमतों को ले और उसके बाद नेमत को ले के नेमत को तो याद ना रखे, लेकिन जो चीज़ें उसको नहीं मिली हैं उनका बहुत चर्चा करें, उनको बहुत याद करें, उसको भी कहते हैं कनूत। जैसे हसन बसरी फरमाते हैं कि वो शख्स जो मुसीबतों को याद रखे और नेमतों को भूल जाए उसको कनूत कहा गया। तो इन्नल इंसान अली रब्बी ला कनूत, के अल्लाह ताला कहते हैं मैंने तो तुझे इतना कुछ दिया और फिर भी तुझे हमेशा रोते ही देखा, तू हमेशा शिकायत ही कर रहा होता था अल्लाह ये ऐसे हो गया, ये नहीं मुझे मिला, वो नहीं मिला, मेरा शौहर ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा तो घर इस तरह, मुझे तो नया सूट नहीं सिला मेरा ईद पे, मैंने तो आज नाश्ता नहीं किया, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हाय हाय मुझे ये हो गया, हाय वो हो गया, हर वक्त हमारे ज़ुबान पे नाशुक्री के कलिमात ऑल द टाइम। तो इंसान इसीलिए उसको कनूत कहा गया। फिर एक और कनूत की डेफिनेशन ये है कि वो जो नेमत को देखे और नेमत देने वाले को भूल जाए। नेमत तो हमें सारों को नज़र आ रही है कि घर नेमत है, हमारी सेहत नेमत है, और ये नेमत है, अभी आपको गिनने को कहा जाए आप कुछ ना कुछ तो नेमतें गिन ही लेंगे, लेकिन नेमत को तो याद रखा, नेमत देने वाले को भूल गए। नेमत देने वाले ने तो सिर्फ 5 दफ़ा अपने सामने झुकने को कहा था, वो भी झुकना मुश्किल हो गया। नेमत देने वाले ने तो थोड़े से हमारे लिए अहकाम दिए थे कि इन लिमिटेशंस में रहना, वो लिमिट्स में भी रहना हमारे लिए मुश्किल है। हम और लिमिट्स तोड़ तोड़ के बाहर निकलते, ये हमसे ये रिस्ट्रिक्शंस बर्दाश्त नहीं होती, हमें ना कोई बताए कि कैसे रहना, मेरी मर्जी में जैसे मर्जी रहूँगी, मैं अपने आप की खुद ही गॉड बनी हुई, अपने आप की खुद ही खुदा बनी हुई, गोया कि मैंने खुद ही अपने आप को बनाया। तो इंसान सारी जिंदगी रब की नाशुक्री करता है, फिर भी देखो रब उसको देने से नहीं हटता। इसीलिए अल्लाह ताला ने कितनी जगह कुरान में बताया, अभी हमने पिछले दिनों ही पढ़ा कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए दिन कर दे और कभी रात ना आए तो वो कौन है जो तुम्हें रात ला के देगा, और अगर अल्लाह तुम्हारे लिए रात कर दे और कभी दिन ना चढ़े तो बताओ वो कौन है, कौन सी ताकत है जो तुम्हें कभी दिन ला के दे सकती है। तो इंसान अगर देखो, और इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ये जिसने तुम्हें समाअत दी, सुनने की तू ताकत दी, देखने की ताकत दी, अगर अल्लाह तुम्हारी समात और बसारत छीन ले तो वो कौन है जो तुम्हें ला के देगा ये वापस, कहीं से ला सकते हैं? मैंने पिछले दिनों ये खबरों के अंदर देखा कि एक लड़की कही थी, वो पता नहीं कब से वो अंधी थी, मुझे नहीं मालूम, शायद पैदाइशी थी, तो उसको किसी ने आँख डोनेट की है और बहुत लाखों की, वो पता नहीं कितने लाखों की, मुझे नहीं पता कितनी उसकी, वो कितने की वो आँख उन्होंने मंगवाई और उसको एक आँख लगाई। तो सुभान अल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती कि उस लड़की के उन्होंने जज्बात जो दिखाए ना, उसने कहा मैंने फर्स्ट टाइम अपनी माँ को देखा, मेरी माँ कहाँ है, मैं अपने फर्स्ट टाइम अपने बाप को देखती हूँ, आज मेरी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट डे है, सबसे खुशी का दिन आज है मेरी ज़िंदगी का, मुझे इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं हुई। कह रही आज मैं एक आँख लगी अभी, कहती कि मैं आज देख सक रही हूँ अपने प्यारों को जिनकी मैं आवाज़ें सिर्फ सुन सकती हूँ। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, आपको अल्लाह ने 2 आँखें दी और जब से आप पैदा हुए तब से देख रहे हैं, कितनी दफ़ा आप इनका शुक्र अदा करते हैं। ये तो मैं एक नेमत की बात है, उससे पूछो जिसके पास नहीं और उसको एक मिली, कितने जतन से मिली उसको, कितनी मुश्किलों से मिली, और वो उसको कैसे शुक्र अदा कर रही है। अब वो कह रही है मेरे लिए सबसे खुशी का दिन आज का ही दिन है, हम तो रोज़ देखते हैं और रोज़ नाशुक्री कर रहे होते, आज भी नहीं कुछ मिला, और सारी ज़िंदगी हमने तो दुखों में ही काटी, हमने तो कभी कोई खुशी देखी ही नहीं, हमारी तो ज़िंदगी में कोई खुशी है ही नहीं, ये क्या है, ये नाशुक्री के कलिमात है। अगर आपने देखना है ना कि कोई इंसान कितना शुक्र गुजार है और कितना कौन नाशुक्र है, किसी को क्या देखना, अपने आप को ही हम देखें, मैं तो ये सबसे कहूँगी, आप एक मीज़ान रखें, उसमें एक तरफ रखें वो चीज़ें जो आपको मिली नहीं है और दूसरी तरफ वो रखें जो आपको नहीं मिली, बताएं वो चीज़ें जो आपको मिली हैं वो ज़्यादा है या जो आपको नहीं मिली वो ज़्यादा है, जो मिली है वो ज़्यादा है। फिर सारा दिन सारी ज़िंदगी हमारे ज़ुबान पे ये क्यों रहता है, मेरा मुझे तो अच्छा घर ही ना मिला, मेरे तो ससुराल ऐसे, मेरा तो शौहर ऐसा, मेरी तो फलां ऐसे, मेरे तो ये मसले भी, हर वक्त हमें वो चीज़ें क्यों याद आती हैं जो हमारे पास नहीं है या जिनमें हमारे लिए कोई तकलीफ़ है, हर वक्त वो क्यों नहीं याद आता कि अल्लाह कितनी सारी वो चीज़ें हैं जो तूने मुझे दी हुई हैं, अल्लाह मैं इनका भी शुक्र तो अदा किया नहीं, तो दूसरी चीज़ों की तरफ कैसे देखूँ? जब इनका शुक्र अदा कर लूँगी फिर कहीं वो चीज़ों की तरफ देखूँ जो मुझे नहीं मिली। अभी तो इनका शुक्र नहीं पूरा हुआ, क्या एक एक ऑर्गन का आप शुक्र अदा कर सकते हो? वो देखो ना क्यामत के दिन ये ऑर्गन्स भी मांगेंगे कि अपना हिसाब कि अल्लाह हमारी भी कीमत दे। ये ऑर्गन्स कहेंगे कि हमारी कीमत, जिसने शुक्र नहीं अदा किया होगा ना तो आंखें कहेंगी कि हमारी कीमत, कान कहेंगे हमारी कीमत। तो एक एक नेमत के पीछे सारी आपकी नेकियां आप दे दोगे तब भी उसका उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते, सारी नेकियां दे के भी। तो मुझे बताओ कि इस दुनिया में क्या शुक्र अदा कर सकते हो? सारी जिंदगी सजदे में पड़े रहो ना और इन आंखों का सिर्फ शुक्र अदा कर लो तो आप नहीं कर सकते। तो बाकी चीज़ों का कब करोगे बताओ? सांस आपको ठीक आ रही है ना, वो जो आपको उस दिन वो भी दिखाई थी, वो क्लिप्स भी आपको दिखाए थे फ्यूनरल वर्कशॉप पे, आप सांस ऐसे बंद करें और सोचें कि सांस ना आए आप और बंद ही रखें, आप कहेंगे मैं सारी दुनिया दे दूँ प्लीज़ मेरी सांस आ जाए, तड़पने लगेंगे यहाँ पे, सारी नेकियाँ सारा कुछ ले लो, मेरा घर सब कुछ ले लो, सांस आ जाए मुझे। आप मुझे ये बताओ जिनके पास सेहत नहीं है, अभी कोई बीमार है तो वो मुझे कहने लगी, वैसे तो हम सारा वक्त बीमारों को देखने जाते हैं, इयादत करते हैं, लेकिन कहते हैं यकीन करो असल सेहत की नेमत की जो कदर है ना मुझे अब आई, फिर जब मैं खुद बीमार हुई हूँ तब मैं कह रही हूँ कि अल्लाह मुझे प्लीज़ ठीक कर दे। मैं कहती हूँ कि दुनिया में सेहत से बड़ी तो कोई नेमत ही नहीं है, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती ना उसको एहसास होता है कि ये नेमत सबसे बड़ी, जब जिनको मिली नहीं है ना उनको एहसास ही नहीं, उनको कदरदानी है ही नहीं कि हमारे पास कोई बड़ी चीज़ है, वो सोचते हैं ये तो हमारा हक ही था, आंखें मिलनी चाहिए थी, कान मिलने ही चाहिए थे, अब हम पैदा हुए तो अल्लाह को देने ही चाहिए थे, माँ बाप देने ही चाहिए थे, घर बार देना ही चाहिए था, शादी तो मेरी होनी चाहिए थी, बच्चे तो मेरे होने ही चाहिए थे, और ये सब कुछ मेरे पास होना ही चाहिए था क्योंकि मैं डिज़र्व करती हूँ। किस बात से डिज़र्व करती हूँ? क्या हमने कारनामा किया कि हम डिज़र्व करते हैं कि हमें ये सब कुछ मिलना चाहिए था? तो शुक्र असल में है यही चीज़ कि इंसान को नज़र आने लगे कि मुझे मेरे पास क्या क्या है, सिर्फ ये नज़र का बदलना है, आप कुछ और चीज़ें वही होंगी, सिर्फ आपकी देखने का एंगल बदल जाता है कि आपको ज़्यादा कुछ वो नज़र आने लगता है जो आपके पास है और कम वो नज़र आने लगता है। जो ही वो चीज़ नज़र आती है ना ये नहीं है, उसी वक्त एहसास होता है हाय इतनी सारी और चीज़ें भी तो हैं। जैसे किसी का वाक्या था ना कि वो उनके पास जूता नहीं था, तो वो थोड़ी दूर आगे गए तो देखा कि किसी के पास पैर ही नहीं थे, तो फरमाया कि अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास पैर तो हैं। तो बात वही है कि आपका देखने का एंगल जब बदल जाता है ना तो वहीं से शुक्र गुजारी आ जाती है। शुक्र सिर्फ ये नहीं कि हम थोड़ी देर बैठ के कहें हाय शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस, नहीं, शुक्र आपकी होल लाइफ के में ना शुक्र है। एक्चुअली आप एक लड़की बहुत ही अच्छी लड़की है माशाल्लाह, मैं देखती हूँ कि हमेशा वो पॉजिटिव ही बात कर रही होती है, सुभान अल्लाह, मैं सोचती हूँ ये किस तरह से करती है, मतलब अल्लाह ताला हम सबको भी वे खूबी दे। यानी उसको उसकी जॉब हो गई तो कहने लगे अच्छा चलो अच्छी बात ही है कि मेरी जॉब हो गई, चलो घर में भी बैठ के मैं फारिग ही बैठती थी जॉब शुरू, फिर उसकी जॉब चली गई तो कहने लगी चलो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह जॉब चली भी गई तो कोई बात नहीं, क्या हुआ अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुआ इतना तो इतनी तो कोई ऐसी मसला नहीं, जॉब चली भी गई तो कोई ऐसा प्रॉब्लम, अच्छा हर चीज़ में वो हमेशा पॉजिटिव ही बात कर रही है, कोई भी चीज़ होगी तो कहेगी हाँ ये है तो कोई बात नहीं, अगर ये चला गया तो ये भी तो मेरे पास है ना, ये सिर्फ एक देखने का एंगल ही चेंज है ना, हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हमें हर वक्त वो चीज़ बस वो पिंच करती रहेगी जो हमारे पास नहीं है, ऑल द टाइम वही कांटा चुभा रहेगा दिल, और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर हम ना सफाया फेर देंगे, क्योंकि जब याद रखें आप उन चीज़ों को हर वक्त देखते रहेंगे ना जो नहीं आपके पास, तो आप कभी भी शुक्रगुजार नहीं हो सकते, कभी नहीं शुक्रगुजार हो अगर आपको ऑल द टाइम वो नज़र आता रहेगा ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है नहीं है मेरे पास, शुक्र किस बात का अदा करोगे, मैंने क्या शुक्र करना है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जैसे वही वाली बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे जब अल्लाह ताला से बात करने कलाम करने के लिए, तो रास्ते में उनको एक फ़कीर मिला, तो फ़कीर ने पूछा मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो फरमाया कि मैं तो अल्लाह ताला से बात करने जा रहा हूँ, तो कहने लगा कि अच्छा अल्लाह से कहना कि हमें भी तो कुछ दे ही देना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, अल्लाह से कहना हमें भी कुछ दे दे, अच्छा फिर आगे गए तो एक बहुत मालदार आदमी था, तो उससे उसने भी यही पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो फरमाया कि मैं अल्लाह से कलाम करने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि अल्लाह ताला से कहना, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है, अब बस आप और की ज़रूरत नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बहुत दे दिया। अच्छा तो जब अल्लाह ताला से कलाम किया तो अल्लाह ताला से अल्लाह ताला को बताया कि वो ऐसे कह रहा था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मालदार को कह दो शुक्र करना छोड़ दे, तो हम उससे नेमतें देना छोड़ देंगे, और फकीर को कह दो शुक्र करना शुरू कर दे तो हम उसको देना शुरू कर देंगे। वो आए और उन्होंने आके मालदार से कहा तुम शुक्र करना छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें देना छोड़ देगा। कहने लगा शुक्र करना कैसे छोड़ो, जिस रब ने इतना कुछ दिया हो ही नहीं सकता कि उसका शुक्र अदा करना छोड़ो, तो फिर अल्लाह भी तुम्हें देना नहीं छोड़ेगा। आगे गए तो फकीर ने कहा अल्लाह ने क्या कहा, मैं फरमाया अल्लाह ताला कहते हैं तुम शुक्र करना शुरू कर दो वो तुम्हें देना शुरू कर दे। तो शुक्र किस बात का करूँ, कुछ हो तो शुक्र करूँ ना। तो जब उसने ऐसा कहा तो उसके ऊपर जो चादर थी ना वो भी हवा ने उड़ा दी, वो भी उड़ गई कि तू ऐसा ना शुक्र, जो ना शुक्र है अल्लाह ताला को वो पसंद नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान पाक में, अगर तुम कुफर करोगे तो यानी अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला यकीनन तुमसे बेनियाज है, लेकिन वो अपने बंदों से नाशुक्री को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगता कि जब आप नाशुक्री करते रहो। आप खुद ही सोचो, आप किसी के ऊपर कोई एक ही हम किसी साथ कोई भलाई करते तो उसके बाद चाहते हैं कि हमारा तो ये चर्चा ही करता रहे हर वक्त, ये बताता ही रहे लोगों को कि जी इन्होंने मेरे साथ बड़ी भलाई की, वो आपके साथ नाशुक्री करे, आपकी बात ना बताए, उल्टा आपके साथ कुछ बुरा करे, तो आपको इतना गुस्सा आता है और आपको इतना बुरा लगता है कि अच्छा मैंने इसके साथ नेकी की, ये इसको तो देखो ये कितना नाशुक्र है, हालांकि आपने क्या कर दिया होगा, किसी का कोई छोटा सा काम कर दिया होगा। यहाँ पे तो देखो वो जो पैदा करने वाला, जो चलाने वाला, उठाने वाला, बिठाने वाला, हर नेमत देने वाला, उसकी नाशुक्री करोगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, क्या करेगा अल्लाह तुम्हें अजाब दे के अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान लेकर आओ। अल्लाह का कोई शौक तो नहीं है कि तुम्हें अजाब दे, अल्लाह का कोई शौक तो नहीं कि तुम्हें तकलीफ दे। तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह नहीं कि तुम्हें कुछ भी कुछ तकलीफ में नहीं मुबतला करेगा, तो तुम शुक्र करो उसका, शुक्र करोगे तो अल्लाह के खजाने खुले हुए हैं, वो और देता रहेगा। इसलिए अपना जाविया बदलो, अपना देखने का एंगल बदलो। दाऊद अलैहि सलाम फरमाते थे ना अल्लाह तेरी इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं, मैं तेरा शुक्र अदा कर ही नहीं सकता, मैं कैसे शुक्र अदा करूँ अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया यही तो मेरा शुक्र है कि तुम मेरा शुक्र नहीं अदा कर सकते, ये इतराफ कर लेना, ये मान लेना कि अल्लाह तेरी इतनी नेमतें हम कैसे शुक्र अदा करें, अल्लाह हमें बता हम कैसे शुक्र अदा करें। हम अल्लाह के लिए कुछ और तो नहीं कर सकते, क्या आप उसको उसको पे करेंगे कि मैं इस चीज़ की ये कीमत है, मगर ये शुक्र गुजारी तो कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे तो एटिकेट्स बहुत समझे जाते हैं कि जी आपने मुझे कोई चीज़ दी तो मैं कहूँ थैंक यू, और अगर नहीं कहा तो ये कितनी बदतमीज है। लेकिन देखो हम तो फिर बहुत ही बदतमीज हुए कि हम अल्लाह की इतनी नेमतें लेके शुक्र नहीं अदा करते। लीस्ट यू कैन डू इज लीस्ट इज नमाज, लीस्ट कि 5 दफ़ा खड़े होके आपको तो हर सांस पे शुक्र अदा करना, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल थे, हर लुक्मे पे अल्हम्दुलिल्लाह, हर लुक्मे पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी ने कहा ना हर लुक्मे के पे क्यों अल्हम्दुलिल्लाह कहते, हम तो एंड में ही कह लें तो हम बड़ी बात होती है, हर लुक्मे पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाया खाना और शुक्र करना बेहतर है, बजाय इसके कि मैं खाऊं और चुप रहूं, तो इसे बेहतर नहीं खाता जाऊं और साथ शुक्र भी करता जाऊं। देखो वो एक एक लम्हे में शुक्र अदा किया करते थे वो लोग, हम बहुत सारा कुछ लेकर भी शुक्र अदा करना ही भूल जाते, हर खाने के बाद शुक्र अदा करना भूल जाते। तो इंसान जो थोड़े पे शुक्र अदा नहीं करता ना, वो ज्यादा पे भी नहीं कर सकता, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। थोड़े पे शुक्र अदा करना सीखोगे तो ज्यादा पे भी करोगे, अगर आपको थोड़े पे शुक्र नहीं आता और आप कहते मेरे पास क्या है जो मैं शुक्र करूँ, तो आप ज्यादा पे भी नहीं कर सकते। इसका मतलब आपकी नेचर नाशुक्री की है, ये नहीं कि जिसको ज्यादा ही मिलता है वही शुक्र करता है, नहीं, बाज़ दफ़ा लोगों के पास बहुत थोड़ा भी होता है। और इसकी एक मिसाल आपको एक वाक्या बयान करती हूँ कि इमाम औज़ाई गए एक जगह पे और उन्होंने समंदर के किनारे से गुजर रहे थे अपने एक साथी के साथ, तो देखा कि एक शख्स है जो कि लेटा हुआ और उसके ना बाजू हैं ना टांगे हैं और अंधा भी है। اور نا اللہ کا شکر ادا کیے چلا جا رہا ہے. تو انہوں نے سوچا یہ کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے؟ سوچیں جو چل نہیں سکتا, اٹھ نہیں سکتا, نہ دیکھ سکتا ہے, وہ کیا کر سکتا ہو؟ وہ تو ایک مثلا ایک پیس ہے گوشت کا پڑا ہوا. کہتے تم کس بات کا شکر ادا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں کیوں نہ شکر ادا کروں, میں سمندر کے پاس رہتا ہوں, اللہ اس سمندر کو میرے اوپر چڑھا نہیں دیتا, تو اللہ کا شکر نہیں ہے؟ اچھا, اور یہ میں پہاڑوں کے پاس رہتا ہوں, اللہ ان پہاڑوں کو میرے اوپر گرا نہیں دیتا, تو میں کیا شکر نہ ادا کروں؟ اور اللہ نے مجھے زبان دی ہے, اب میں زبان سے بول سکتا ہوں, تو کیا میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ تو کہنے لگے اللہ اکبر, یہ کتنا شکر گزار ہے, بہت متاثر ہوئے. اور اس کو کہنے لگے بتاؤ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے, کچھ دن ہو گئے ہیں وہ کھو گیا, کہیں گم ہو گیا. وہ نا مجھے وضو کراتا تھا, میں نماز پڑھتا تھا, تو وہ میرا بیٹا پتہ نہیں کہاں چلا گیا, مل نہیں رہا. اب میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئے, اس کو ڈھونڈ دیں, خود تو بیچارے جا نہیں سکتے. اچھا وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی کے ساتھ میں جا کے ان کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے جس کو بھیڑیے نے کھا لیا تھا. اچھا اب انہوں نے کہا اللہ میں کس طرح اس بندے کو بتاؤں گی, اب تمہارے ساتھ یہ بھی ہو گیا, ایک بندہ ہے زمین پہ پڑا ہو, نہ اس کو کوئی گھر ہے, نہ گھاٹ ہے, نہ کوئی, بس زمین پہ پڑا ہوا ہے گوشت کا پیس, اس کو میں کیسے بتاؤں؟ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ آپ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں یا ایوب علیہ السلام؟ تو کہنے لگے ظاہر ہے ایوب علیہ السلام اللہ کو پیارے ہیں. تو کہنے لگے تو اچھا یہ بتائیں کہ ایوب علیہ السلام کے اوپر تو اتنی مصیبتیں آئیں, اتنی مصیبتیں آئیں, پھر انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے انہوں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا. تو کہنے لگے کہ اچھا آپ کو پتہ ہے نا ان کے اوپر کیا کیا مصیبتیں آئیں؟ ہاں مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے یہ کیا ان کے, یہ کیا ان کے, آپ کو پتہ ہے ایوب علیہ السلام کو کس طرح لوگ, ہاں کیسی بیماری ہو گئی تھی, کیسے کیڑے پڑ گئے تھے, کیا ان کے ساتھ ہوا تھا؟ تو ایوب علیہ السلام اللہ کو زیادہ پیارے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے نا اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا, پھر ان کو کس کس طرح آزمایا؟ کہتے ہاں پتہ. لیکن ہر آزمائش پہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ہر آزمائش پہ کہا شکر. تو انہوں نے کہا پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا اللہ نے لے لیا. تو کہنے لگے الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, تو نے کچھ دن تو میرے پاس رہنے دیا میرا بیٹا, کچھ دن تو نے مجھے یہ مہلت دی کہ میرا بیٹا میرے پاس رہا, ایسے بھی شکر گزار ہے. آپ کمپیئر کرو ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کہ ہم کیسے نہ شکرے, ہم جس کا کھاتے ہیں اس کی روٹی کھا کے اسی کی نہ شکر, کھانا کھائیں گے پھر اس کے بعد نماز ہی بھول گئے, پانی پئیں گے شکر ادا کرنا ہی بھول گیا, جس نے کپڑا دیا وہ کپڑا پہن کے اسی کے لیے تکبر کرنے لگے, جس نے زبان دی اسی کے خلاف بولنے لگے اور کہنے لگے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے لیے, جس نے آنکھیں دی اس کی دیوی آنکھوں سے ہر چیز دیکھی, لیکن جس کو اس نے کہا دیکھو اس کو, اس ان نشانیوں کو دیکھو اور اس قرآن کو پڑھو, اس کے لیے ہمارے پاس نہیں ٹائم, یہ نہیں اس کے لیے نہیں لگ سکتے, ٹی وی دیکھنے کے لیے آنکھیں لگ سکتی ہیں, یہ کان سارا دن فون پہ رہ سکتا ہے گپے مارنے کے لیے, لیکن دیکھو یہ کان اس کی شکر گزاری کے اندر کبھی اس کا کلام سننے کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا, کیسے نہ شکر ہے؟ اگر یہ کھانا کھاؤ اور یہ کھانا ہی ہضم نہ ہو اور جا کے پیٹ میں زہر بن جائے تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کر سکتا انسان. اگر ایک چیز اللہ چھین لے تم سے تو تم ہزار جتن کر کے واپس نہیں لا سکتے, جیسے یہ خوشیاں اللہ چھین لے, خوشیاں دینے والا بھی اللہ, تو تم واپس نہیں لا سکتے, لیکن تم پھر بھی کتنے دلیر ہو کہ اللہ کو للکارتے ہو, پھر بھی کھڑے ہو کے پھر بھی کہتے ہو ہمیں پرواہ نہیں, ہمیں شکر ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں, پھر بھی کہتے ہو ہمارے پاس تو یہ نہیں, پھر بھی اللہ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہو, پھر بھی کہتے ہو اس نے یہ نہیں دیا اور میں تو اس سے ناراض ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام نہیں کیا اور اللہ نے مجھے یہ دکھ دے دیا, استغفر اللہ. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہو اللہ تیری کیا مجال کہ تو مجھے یہ دکھ دے؟ اللہ اکبر, کس کدھر گم ہو آپ؟ اگر آپ کو نعمتوں کا احساس ہوتا نا, یقین کرو آپ کا یہ ماتھا جو ہے نا کبھی سجدے سے نہ اٹھ پاتا, اگر آپ کو واقعی نعمتوں کا احساس ہوتا تو آپ کی زبان کبھی یہ بول نہ پاتی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کے لیے, میں کیسے کہوں, مجھے تو شرم آ جاتی ہے, کوئی آپ کے ساتھ ذرا احسان کرے تو آپ کہتے ہیں کیسے اس کو کوئی بات سناؤں, میں کیا کہوں, دیکھنا انہوں نے میرے پر بڑا احسان کیے, میں آئے تو کوئی آپ کو اللہ کی طرف بلائے تو پھر آپ کیسے جرات کرتے ہو کہ یہ کہو کہ ہم نے نہیں آنا, پھر شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ ہم پھر ہی کہہ دیں کہ چلو اب کیا کریں, ہمیں شرم آتی ہے, ہم نہ نہیں کر سکتے. फिर भी आराम से ढीठों की तरह कह देते आ क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं, बच्चे हैं ना हमारे बहुत छोटे। मैं किसी के ऊपर टॉन्ट नहीं कर रही, एक अमूमी बात है। आप ये सोचो जरा, हमेशा मैं लोगों को ये कहती हूँ, जिस रब ने औलाद दी है ना, आप उसको उजर बना रहे हो। ये एक्सक्यूज है मेरा, ये कि उसने मुझे औलाद जो दे दी तो बड़ा उसने बुरा किया कि मुझे ये औलाद दे दी, क्योंकि उसकी वजह से मैं उसके रास्ते पर नहीं आ सकता। करना क्या चाहिए था, अल्लाह तूने मुझे औलाद दी है, अल्लाह मैं और तेरे आगे झुक जाऊं, ये औलाद मुझे तेरे रास्ते की रुकावट ना बनने दे, ये औलाद ऐसी ना बने कि मुझे तेरे रास्ते से रोक दे। अल्लाह तूने तो मुझे एक और नेमत दे दी, अब ये तो नेमतों में इजाफा हुआ या कमी हुई, और नेमत दे दी, या अल्लाह और मैं तेरे आगे झुक जाऊं, अल्लाह मैं तेरी और फरमा बरदार बन जाऊं, मैं तेरे से दुआएं करती थी ना औलाद की, अल्लाह तूने मुझे औलाद दे दी। अच्छा फिर लड़कियों का क्या होगा, पहले तो हम फारिग थी, अब शादी हो गई है तो हम तो नहीं कर सकते, शादी के बाद तो हमारे बहुत सारे काम है। अल्लाह तो ये नहीं सोचा कि तू अपने घर में कंवारी बैठी हुई थी, तेरी माँ भी दुआएं करती थी, तू भी दुआएं करती थी, या अल्लाह मुझे नेक जोड़े मिला दे। अब अल्लाह ने शादी कर दी, तुझे एक घर दे दिया, तुझे एक जोड़ा दे दिया, अब तू कहती है मुझे उसी अल्लाह के लिए वक्त नहीं है, हाँ उसी अल्लाह के लिए वक्त नहीं है जिसने तुझे आज जोड़ा दे दिया, उसी अल्लाह के लिए वक्त नहीं जिसने आपको घर दिया। आप उस घर को सजा रहे हैं लेकिन आप अपने अमल से बता रहे हैं कि मुझे उसके लिए टाइम नहीं है जिसने मुझे ये घर दिया, मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है जिसने मुझे ये बॉडी दी हुई है, मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं जिसने मुझे ये सेहत दी हुई है, मेरे पास उसी रब के लिए टाइम नहीं है, सॉरी मेरे पास और जो बहुत सारे काम है। कैसी ना शुक्रिया थी हमारी, हमें तो एक पल के लिए भी, एक सेकेंड के लिए भी अल्लाह की नाशुक्री नहीं करनी थी, हमारा तो सारा वजूद ही नाशुक्रियों में। एक फरिश्ता है जो कयामत के दिन सर उठाएगा सजदे से, जब से अल्लाह ने उसको पैदा किया हुआ वो सजदे में पड़ा हुआ, तो वो सर उठाएगा और कहेगा अल्लाह तेरा हक अभी भी अता नहीं हुआ, अल्लाह तेरा हक अभी भी अता नहीं हुआ। और हमें देखो, हम तो सारे शायद हक अदा करके बैठ चुके हैं, जब ही तो हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं, तुम्हारा वक्त असल में किन चीज़ों ने ले लिया, सॉरी टू से उन नेमतों ने जो अल्लाह ने तुम्हें दिए। आज ना तुम्हारे पास घर होता तो बैठी होती किसी झुग्गी के अंदर, ना गाड़ी होती तो किस चीज़ को ड्राइव करती है? जो दोस्त अल्लाह ने तुझे दिए हैं जिनके साथ वक्त गुजरता है और पार्टीइंग होती है, वो दोस्त ही अल्लाह ना देता है? अब जैसे अब इन्होंने बात बताई है कि सारे दोस्त साथ छोड़ जाते हैं जिन इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है, तो अल्लाह ताला खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बुरा वक्त कर देता, उन दोस्तों ने तुम्हारे साथ बैठना भी नहीं था, उन तुम्हें कॉल करने से भी घबराना था, वो तो अल्लाह ही की देन है कि तुझे दोस्त भी दे दिए, तुझे घर भी दे दिया, तुझे सेहत भी दे दी, तुझे ज़िंदगी भी दे दी, तुझे औलाद भी दे दी, तुझे सुख भी दे दिया, तुझे अमन व अमान भी दे दिया, तुझे खाना पीना भी दे दिया। अगर अल्लाह ऐसा तुझे भूखा रखता कि तुझे खाने के लाले पड़े रहते, हर वक्त खाने की फिक्र पड़ी रहती, तो फिर क्या करते? अल्लाह ने सब चीज़ें दे दी, तेरा फ्रिज भी भर दिया, तो अब इसीलिए कहती हूँ कि खाने पकाने में बहुत टाइम लगता है, दावतें करने में बहुत टाइम लगता है, आने जाने में बहुत टाइम लगता है, हमारा फिर फन कैसे होगा, हमारी पार्टी कैसे होगी, हमारी दावतें बहुत होती हैं, फ्रेंड्स के लंचेस बहुत होते हैं, तो सारा इसलिए है कि ऐ नाशुक्र इंसान, तुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया इसलिए तू इतना नाशुक्र हो गया। आज अल्लाह तुझे ना कुछ देता तो फिर देखते ये लोग भी तुझे ना पूछते कभी, ये इंसान भी तुझे कभी ना पूछते, लेकिन देखो तू ना शुक्र है, फिर भी वो रब तुझे और दिए चला जा रहा है, फिर भी नेमतों की बारिश किए चला जा रहा है, तो फिर हमें कैसा होना चाहिए? क्या इसको सुन के अपने अंदर गिल्ट नहीं पैदा होती? क्या इसको सुन के ये दिल नहीं चाहता कि हमें अल्लाह के आगे झुक जाना है? उसकी किसी बात को हमने नहीं कहना नो, हर चीज पे कहना लब्बई लब्बई, अल्लाह मैं हाजिर, अल्लाह मैं हाजिर, समय ना वो आता ना, अल्लाह हमने सुन लिया, हमने मान लिया। जैसे वो अभी कह रही थी कि लोग कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ना हो जाना, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या है? जो अपने रब की ज्यादा मानना शुरू कर दे, जो अपने रब की ज्यादा मानना शुरू कर दे, तो बहन तुम ज्यादा ना मानना, थोड़ी थोड़ी मान लेना, ज्यादा मानने की क्या जरूरत है, कुछ अपनी भी तो मानो। अल्लाह अकबर, आज जो ज्यादा मानने लगे ना उसको लोग कहते हैं तू बड़ी एक्सट्रीमिस्ट हो गई, कहीं ऐसी ना हो जाना, कुरान पढ़ के भी कोरी ही रहना, अमल ना अमल में ना कुछ आए, थोड़ा थोड़ा कर लिया करना जहाँ पर तुझे आसानी हो जाए, तू अगर बदल गई तो एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगी। अल्लाह तो अगर अल्लाह को एक्सट्रीमिस्ट पसंद है ना जो अमल करने वाला है, تو ہم سارے خوش ہیں کہ ہم ایکسٹریمسٹ کہلائیں گی, اور ہم سارے خوش ہیں اللہ ہم ایکسٹریمسٹ ہی اچھے, جس کو تو پسند کر لے, جو تیری نظر میں جج جائے تو اللہ وہ اچھا ہی ہے, وہ چاہے لوگ اس کو کوئی بھی نام دے دے, اور اللہ جس کو تو رد کر دے تو وہ چاہے دنیا کی نظر میں کوئی بہت بڑا ایوارڈ اس نے لے لیا ہے, کوئی بہت بڑا آنر اس نے لے لیا ہے, وہ کچھ بھی نہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے, چاہے اس کو آسکر ایوارڈ مل رہے ہیں یا دنیا کا کوئی تمغہ مل رہا ہے, وہ کچھ نہیں ہے اگر وہ تیری نظر میں کچھ نہیں ہے, جو تیری نظر میں گر گیا اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو اس لیے میری بہنوں اپنی نا زندگی میں دیکھنے کا, چیزوں کو دیکھنے کا اینگل بدلو, چیزوں کو ڈفرینٹ دیکھو, ہر چیز کے اندر یہ پہلو دیکھو, اگر آپ ڈھونڈنے لگو گے نا تو آپ کو ہر چیز میں پازیٹیو پہلو ملے گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں اس بوتل کو تو ہم دیکھتے ہیں, کوئی دیکھے گا تو آدھی خالی ہے تو کوئی کہے گا آدھی بھری ہوئی تو ہے نا, ٹھیک ہے. تو ہر چیز میں وہ آپٹمسٹک رہو, پیسمسٹک مسلمان نہیں ہو سکتا. ہم دیکھیں آج سارے پیسمسٹک ہیں, ایسے ہو گیا مسلمان ہے یہ فلاں, ہر وقت نیگیٹو آل دا ٹائم, پازیٹیو بات نہیں کرتے. تو ہر چیز کے اندر اپنے دیکھنے کا زاویہ بدل لیں, اور ہر چیز میں آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ کی نعمتیں ہی نظر آئیں گی. آپ کو یہی ہمیشہ, میرے سے گارنٹیڈ لکھ لیں, آپ کو ہمیشہ یہی نظر آئے گا کہ جو مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے وہ زیادہ ہی ہے, زیادہ ہی ہے, ہمیشہ وہ پلڑا بھاری نظر آئے گا. تو اس لائف سٹائل کو اپنائیں, اور جب آپ کے ساتھ بھی کوئی ناشکری کی بات کر رہا ہو نا, کیونکہ یہ کنٹیجیس ہے, ایک بات کر رہا ہو نا دوسرے کو بھی اپنا کوئی درد یاد آ جاتا ہے, تو جب وہ بات کر رہا ہو تو اس کو بھی سمجھائیں کہ نہیں بہن دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں بھی تو دی ہیں نا, سارے ایک جیسے ہو جائیں, شکر گزار بن جاؤ, رب کے آگے جھکنے والے بن جاؤ, رب کی نعمتوں کا احساس کرنے والے بن جاؤ, اور ایسے بنو کہ جن سے رب راضی ہو جائے ان شاء اللہ. آخر میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا, تو عورتوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے ہم کیوں جہنم میں زیادہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وجہ بیان فرمائی وہ یہی تھی کہ عورتیں ناشکری بہت کرتی ہیں, اپنے شوہروں کی بھی ناشکری بہت ہے اور ویسے بھی ہمارا رویہ ناشکری کا زیادہ ہے. آپ دیکھیں ہم کسی کی کوئی چیز دیکھ لیں گے تو ہمیں فوراً یہ درد لگ جائے گا کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے یہ چیز, میرا گھر ایسا کیوں نہیں, میرا بچہ ایسا کیوں نہیں, میرا ہسبینڈ ایسا کیوں نہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اپنا رویہ بدلنا ہے, کیونکہ ناشکری انسان کو کہاں لے جاتی ہے, جہنم میں, اور شکر گزاری کہاں لے جاتی ہے, جنت میں. اسی لیے جنتی جنت میں جا کے بھی کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ, اللہ ہی کا شکر ہے, کیونکہ وہ جان جائیں گے کہ یہ ساری نعمتیں اس وقت بھی اللہ نے دی تھی, اور اللہ ابھی بھی تیرا ہی شکر ہے جو تو نے ہمیں ہدایت دی اور یہاں تک پہنچایا. وہ یہ نہیں کہیں گے ہم بڑے نیک تھے ہم بڑے اچھے تھے, وہ یہی کہیں گے اللہ تیرا ہی شکر ہے. تو ناشکری جہنم تک لے جا سکتی ہے, ناشکری زبان سے مت یہ ادا کرو, جب دل میں آئے گی تبھی زبان بھی ٹھیک ہوگی نا. دل میں اگر احساس نہیں جاگا نا, دل میں غور و فکر کرتے رہا کریں, غور کیا کریں نعمتوں کے اوپر اور ان کا احساس دل میں لے کر آئیں, جب دل میں احساس جاگے گا تو انشاءاللہ زبان پہ بھی آئے گا, یہ زبردستی کرنے کی کوئی بات نہیں, انشاءاللہ خود بخود آ جائے کرے گا. تو اس لیے جب آپ کے مثال کے طور پہ کبھی جو تھوڑی سی آپ کو میں ایگزامپلس دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ ہر اینگل میں شکر گزاری کو دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس بہت زیادہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے گھر کا, بہت صفائیاں کرنی پڑتی ہیں, آپ کہتے ہیں ہائے میں تو بہت صفائیاں کر کر کے تھک گئی, کتنی صفائیاں. تو یہ شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو بڑا گھر دیا ہے تو صفائی کر رہے ہیں نا, اسے بڑے بڑے. اگر چھوٹا گھر ہوتا تو ایک کمرے کے اندر ہی آپ رہ رہی ہوتی تو وہ تو آسان ہی تھا. تو اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا گھر دیا تو اس کی صفائی کرتے ہوئے تھک رہی. پھر اگر شام کو سارا دن کا کام کرتے ہوئے تھک جاؤ تو یہ شکر ادا کرو اللہ تمہیں صحت دی تھی, اعضاء کو سلامت رکھا تھا تبھی تو کام کیا تو تھکی نا, اگر بستر پہ پڑی رہتی کام ہی نہ کر سکتی تو کیا تھکنا تھا. اگر آپ کے پاس کپڑے بہت زیادہ ہیں لانڈری کے لیے تو کس چیز کا شکر ادا کریں, اللہ اتنے کپڑے دیے ہیں تو اتنے دھو رہی ہوں, ایک جوڑا پہننے کا ہوتا اور ایک دھونے کا ہوتا تو وہی لٹکا سی رہتی. اگر کپڑے ٹائٹ ہو رہے ہیں تو ہائے یہ اور اوف کیا مصیبت ہے, نہیں اللہ تم نے اتنا مجھے کھانے کو دیا ہوا ہے इसी लिए टाइम
तो बहुत ही
है। अगर ना खाने को मिलता तो आज देखिए आप जाके जो इथोपिया के लोग हैं जब उनको दिखाते हैं तो यकीन करें आंखों में आंसू आ जाते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं। उस दिन ही वो दिखा रहे थे और मैं इतना अपने बच्चों को दिखा रही थी, उसका एड दिखा रहे थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें माफ कर देना, अल्लाह हमारी पूछ ना करना है कि वो बच्चा न्यू बॉर्न बेबी था तो वो कह रहे थे कि ये बेबी सर्वाइव नहीं कर सकेगा अपनी फर्स्ट बर्थडे तक, क्योंकि वो उसको दिखा रहे थे, कह रहे थे ये इतने दिन से भूखा, बहुत बड़ा सहार हो जाता है आपको पता है जब भूख होती है, और स्केलेटन की तरह कह रहे थे कि ये भूख की वजह से रो भी नहीं पा रहा क्योंकि रोने में भी जान लगती है। मैं कह रही थी अल्लाह तूने अगर इन नेमतों का हिसाब ले लिया जो मेरे फ्रिज में पड़ी हुई, मैं कैसे हिसाब दूंगी। अगर आपको पार्किंग दूर मिलती है, देखिए हम कितनी बातों पे हम ना शिकायत करते हैं, तो अल्लाह तेरा शुक्र है कि अगर मैं हैंडीकैप होती तो मैं सबसे आगे खड़ी करती ना गाड़ी, हैंडीकैप होती तो वहाँ पे खड़ी करती तो मुझे चलना ही ना पड़ता। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हैंडीकैप नहीं बनाया, मैं चल के जा सकती हूँ। आप मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ है जो आपको बॉदर करती है, मैं आपको बताऊं कि उसमें पॉजिटिव बात क्या है। हर चीज़ में आप निकाल सकते हैं, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ को अगर आप सिर्फ देखना, अपनी सोच को बदले, अपने देखने का एंगल बदल लें तो आप शुक्र गुजार ही हो जाएंगे। सारा दिन आपके मुंह से निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, खड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बैठने के लिए तूने ये बैठे के लिए, जिनको ये कमर की तकलीफ होती है बैठना मुश्किल है, या मुझे घुटनों की तकलीफ हुई मुझे पता चला फिर कि या अल्लाह ये कितनी बड़ी तेरी नेमत है कि तूने मुझे इतने आज तक ये चांस दिया था कि मेरा सर जो है ना ज़मीन के ऊपर लगता था मेरा माता, अल्लाह अब मैं मुझे चेयर पे बैठ के सजदा करना पड़ा, अब मुझे पता चला इसकी तकलीफ कितनी, कि ये भी एक तकलीफ है कि अल्लाह मैं तेरे आगे झुक नहीं पा रही। इंसान ना नेमतों की कदर कब करता है, जब नेमत चली जाती है, लेकिन जवाल के बाद नेमत की कदर करने का कोई फ़ायदा नहीं। नेमत जब आपके पास है उस वक्त कदर करो, जब बच्चे तंग करें तब भी इस चीज़ की कदर करो। अल्लाह ने औलाद तो दी है ना, कई बे औलाद बैठे हैं, अल्लाह से इतनी दुआएं मांगते नहीं है उनके पास औलाद, तो अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, हस्बैंड है, अगर हस्बैंड किसी का कोई हस्बैंड से तंग आ रहा है तो ये तो सोचे कि हस्बैंड मेरे साथ है तो फिर है, अगर हस्बैंड घर पर ही ना होता कहीं और होता तो हस्बैंड गन बहुत मचाते हैं, हस्बैंड मैस मौत, यही हमें शिकायत होती है, वो मैस इसलिए मचाता है कि वो घर में है आपके साथ, वो किसी और औरत के साथ बैठा होता तो आपके घर में कोई मैस ना होता। तो देखो आप हर एक चीज़ में एक पहलू है शुक्रगुजारी का, आप शुक्रगुजार बनना चाहो तो आप बहुत सारी चीज़ों में से ये पॉजिटिव बात निकाल सकते हो और अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हो, तो और कभी ना शुक्री ना करो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला हमें शुक्र गुज़ार बंदियों में शामिल फरमाया, क्योंकि अल्लाह ताला ने शिकायत फरमाई है कलील मा तशकुरून, तुम में से बहुत थोड़े हैं जो शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह हमें इनमें ना करना जो बहुत थोड़ा शुक्र अदा करते हो तुम और बहुत थोड़ी शुक्र गुज़ारी है तुम्हारे अंदर, तो अल्लाह हमें इनमें ना करना जो बहुत थोड़ा शुक्र करते, हमें उनमें करना जो उठते बैठते अल्लाह का शुक्र अदा करते। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।